बनाया प्रभु ने है हमें अपना, दिया सुख देखो कितना, मधुबन की भूमि में पांव रखने के साथ ही आत्मा नेचुरल सुख का, स्वतः खुशी का और परम आनंद का अनुभव करने लग पड़ती है। तो ऐसी पावन भूमि के अंदर आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है, दादियों की तरफ से, बाप दादा की तरफ से, वरिष्ठ दीदियों की तरफ से। अपने स्वागत में एक बार ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छा, तिलक तिलक दे दो। आज की इस स्वागत की शुभ परंपरा को हम सभी आगे बढ़ाएंगे। यज्ञ के अंदर हर शुभ कार्य की शुरुआत आत्मस्मृति से है, यज्ञ की। तो आज की इस स्वागत की श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे सामने उपस्थित हैं आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी और आदरणीय राजयोगिनी सुषमा दीदी जी। मैं बहन अंतिमा बहन को नम्र निवेदन करूंगी कि दोनों ही बहनों को तिलक से आत्मस्मृति की इस दिव्य अनुभूति से अभिवादन करेंगे। हम सब इस स्वागत की श्रृंखला में तालियों से अपने आप को जोड़ेंगे। स्वागत हो इन दीदियों का, स्वागत हो इन तपस्विनियों का, स्वागत हो इन दिव्य विभूतियों का। बाबा ने इन दिव्य मणियों की रचना हमारे प्रति की है कि जिन्हों की उपस्थिति मात्र से ही वातावरण के अंदर एक रूहानियत की लहर फैल जाती है। तो आज हम सभी ऐसी विशेष आत्माओं का लाभ लेते रहेंगे। सबसे पहले मैं आदरणीय शीलू दीदी से निवेदन करेंगी कि आप अपनी दिव्य वाणी का लाभ हम सभी को दे। आप सभी, मैं समझती हूँ ब्राह्मण परिवार की कोई भी आत्मा ऐसी नहीं होंगी कि जो शीलू दीदी को न पहचानते हो, ठीक है ना? सारा विश्व, लाखों ब्राह्मण आत्माओं को जिन्होंने अपनी ज्ञान वाणी से लाभान्वित किया है, ऐसी आदरणीय शीलू दीदी जी 1960 में हमारे में से, मैं तो कितनों के जन्म भी नहीं हुए होंगे, ऐसी घड़ी में 1960 में आप बाबा के बने और मुंबई विश्वविद्यालय से साइंस में ग्रेजुएशन प्राप्त करके आज से 45 साल पहले आपने अपने जीवन को बाबा की सेवा के अर्थ समर्पित किया। विश्व के पांचों ही महाद्वीपों के अंदर 60 से भी ज्यादा देशों में आपने ईश्वरीय सेवा अर्थ यात्राएं की हुई है। 1976 से आप यहाँ ही मधुबन हेडक्वार्टर में रह करके शिविर का सुचारू रूप से संचालन करते हैं। जो भी देश विदेश से बाबा के बच्चे आते हैं उनको दिव्य पालना की अनुभूति कराते हैं। जब अव्यक्त अवतरण बाप दादा का होता है तब विदेश के भाई बहने ट्रांसलेशन परमात्म महावाक्यों का अनुवाद आदरणीय शीलू दीदी से प्राप्त करते हैं। आपने जी टीवी, सोनी टीवी, संस्कार, आस्था ऐसी अनेक टीवी चैनलों के अंदर बाबा के ज्ञान को प्रवाहित किया हुआ है। दीदी की सबसे बड़ी पहचान, परिचय के अंत में मैं कहूंगी, दीदी की सबसे बड़ी पहचान सरल स्वभाव, हर्षित चेहरा और प्रखर बुद्धि प्रतिभा, प्रखर बुद्धि प्रतिभा। तो अभी हम सभी आदरणीय शीलू दीदी जी से दिव्य ज्ञान रत्नों का स्वीकार करेंगे। अंतःकरण से इन अनुभूतियों का पहले स्वागत करेंगे। आदरणीय शीलू दीदी जी,
फिर से ओम शांति। दादी जानकी जी तीन बार करती है, तो फिर से एक बार ओम शांति। प्यारे बाबा के घर में मधुबन तपोभूमि में वरदान भूमि में परिवर्तन भूमि में आप सभी का प्यारे बाप दादा दादियां सर्व मधुबन निवासी और हमारी तरफ से भी बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कल भी बाबा ने कहा कि मधुबन का श्रृंगार हैं आप, बहुत सुंदर टाइटल बाबा ने दिया, ब्राह्मण कुलभूषण। तो हम सब सच्चे सच्चे ब्राह्मण, मुख ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण इस मधुबन भूमि के विशेष कुलभूषण है। तो इतना नशा हम बच्चों को रखना है, और मधुबन में जब बच्चे आते हैं तो मधुबन का भी श्रृंगार बन जाते हैं, मधुबन को और निखार मिलता है। तो मधुबन की तो महिमा परम अपार है, और यहाँ पर आकर के बट्टी करना ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया की निगाहों से, दुनिया की आवाज़ों से, दुनिया के प्रदूषण से दूर होकर इस शांत वातावरण में, पवित्र वातावरण में, अपनापन के वातावरण में यहाँ पर बाबा की यादों में हम खो जाते हैं। और अभी तो वैसे भी बारिश का मौसम आ गया है, तो चारों ओर कई बार सारा दिन फॉग बादल नीचे आ जाते हैं, बारिश भी खूब है, तो कई बार ऐसे लगता है जैसे सूक्ष्म वतन में घूम रहे। सूक्ष्म वतन का ऐसा ही अनुभव है, बाबा को दिखाते ना बादलों के बीच में। गुलजार दादी ने सबसे पहले अव्यक्त बाप दादा का ऐसे ही अनुभव किया जब वतन में गई, बादलों के बीच में लाइट के आकार में, चारों ओर लाइट ही लाइट, हजारों चंद्रमाओं की चांदनी चारों तरफ बिखरी हुई, और ऐसे स्वरूप में बाप दादा को देखा अव्यक्त रूप में लाइट के आकार में। तो वो सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार किया, लेकिन यहाँ तो वो रूप तो चलो हम कहाँ साक्षात्कार करें या न करें, पर उसकी थोड़ी सी झलक बादलों के बीच में घूमना ऐसा अनुभव होगा। और पता नहीं हिसार से आप आए हैं, कितनी गर्मी थी वहाँ, गर्मी थी या बारिश थी? हाँ गर्मी थी, बारिश नहीं थी। छाते वाते लाए हैं, क्योंकि कहीं समझते ना तो जैसे यहाँ मौसम है वहाँ माउंट में भी ऐसा ही मौसम होगा। तो यहाँ तो सुबह सुबह ठंडी भी पड़ती है, अगर बारिश बहुत होती है तो ठंडी भी होती है, रात को भी थोड़ी सी ठंड होगी। शॉल स्वेटर लाए हैं कि नहीं लाए? एक बहन को मैंने पूछा आप लाइए, कहती है बहन जी वहाँ तो स्वेटर को हाथ लगाने को भी दिल नहीं करता था, इतनी गर्मी थी। तो लाए कहाँ से, सोचा भी नहीं था, बारिश भी नहीं थी, तो छाता भी नहीं लाए, गर्म कपड़े भी नहीं लाए। तो हम कहते भाई ये तो पहाड़ है, पहाड़ों पर जाते हैं तो मौसम तो दूसरा ही होता है ना। तो इसीलिए यहाँ कई बार तो सारे दिन में चार मौसम बदलते हैं, सवेरे देखो बारिश हो गई, दिन में धूप निकली, शाम को फिर फागी आ गई, रात को फिर जोर से बारिश हो जाती है, पता भी नहीं चलता है। इसलिए हर मौसम के लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। परंतु बाबा ने हमें सिखा दिया है कि हर हाल में खुश रहना है। जिस हाल में बाबा रखे उसमें खुश रहना है। जो खिलाए, जो पहनाए, जहाँ बिठाए, क्योंकि मन बुद्धि से तो समर्पित हो ही गए ना। ये तो बाबा नहीं कहते हैं कि सब यहाँ करके बैठो। कई मधुबन बाबा की मुरलियों में आता है ना, बच्चे कहते बाबा बस हम समर्पित हो जाएं और मधुबन में आके बैठ जाएं। तो मधुबन में आके बैठ के क्या करेंगे, सेवा करनी है ना। तो यहाँ बैठ के थोड़ी सेवा वो रूप की होगी जो आप बाहर कर सकते हो। तो इसीलिए आप आए हैं यहाँ से, यहाँ पर बादल भरें और बादल भर करके जाके बरसना है। यहाँ आए हैं जैसे बैटरी चार्ज होने आई है, फिर चार्ज होकर के फिर यूज होनी है। रोज मोबाइल की बैटरी चार्ज करते ना, फिर बैटरी चार्ज हो गई फिर सारा दिन चलती है, फिर बैटरी चार्ज करो। तो आत्मा की भी बैटरी यहाँ चार्ज होती है। और सागर के कंठे पर आए हैं तो सागर से बादल पानी भरते हैं सूर्य की अग्नि से, और फिर जाकर के बरसते हैं। तो यहाँ से भी शक्ति भर के फिर जाकर के सबको बांटना है। इसीलिए बीच बीच में ये प्रोग्राम खास करके इस साल रखे हैं। वैसे तो बरसातों में ज्ञान सरोवर में तो प्रोग्राम चलते थे, पर पांडव भवन में कोई ऐसा बाहर का मना भाई बहनों का कोई प्रोग्राम नहीं होता था। लेकिन इस साल हमारी मुन्नी बहन को भी ख्याल आया और कई भाई बहनों ने रिक्वेस्ट भी किया कि हम पांडव भवन में बट्टी करना चाहते हैं। तो हमारी रमेश बहन भी बहुत होशियार निकली है, उसने भी अपना चांस ले लिया। तो अभी तक 3-4 तो हो चुकी है बठियां। हाँ, पिछला जो ग्रुप था वो बांगूर कलकत्ता से आया था, कितने तो प्लेन से आए, कितना दूर से आए पर बठी करने के लिए 3 दिन की। फिर इसके पहले सुषमा बहन का ग्रुप था जयपुर का, उसके पहले अहमदाबाद का ग्रुप था, उसके पहले जयपुर राजा पार्क की तरफ से ग्रुप था। तो 4 बठियां तो हो गई है। तो अभी आप, इसके पहले घाटकोपर वाले आए थे, बॉम्बे से आए थे, इसके बाद भी बहुत है। तो आप लोगों ने चांस ले लिया, तो इसीलिए फिर से आपको बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। वैसे तो पहले तो मधुबन एक ही था और सब कुछ मधुबन में ही होता था, न ज्ञान सरोवर था न शांतिवन था। मम्मा बाबा के समय तो यही छोटा सा पांडव भवन था। चलो मम्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद फिर दीदी दादी, जिनके लिए हम कहते थे दो हंसों का जोड़ा, दो शरीर पर एक आत्मा, दोनों ने मिलकर के कैसे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को दिन दुगनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ाया। विदेशों में सेवाएं शुरू हुई और कहां से कहां आज ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय पहुंच गया है, जो 140 देशों में बाबा की सेवाएं चल रही है। और इतने देशों से भाई बहनें यहां आती हैं। तो जब ये भव्य हॉल देखते हैं और देखते हैं 16 भाषाओं में यहाँ ट्रांसलेशन होती है और कोई पिलर नहीं इस हॉल में, इतना सुंदर यहाँ का वातावरण है, तो सचमुच लोगों को आश्चर्य तो होता ही है। यूनाइटेड नेशंस में भी इस प्रकार की इतनी व्यवस्था नहीं है, इतनी भाषाओं में ट्रांसलेशन, मतलब है बहुत लेकिन इतना वातावरण तो नहीं मिलेगा ना जो यहाँ है। तो पांडव भवन के बाद रोम शांति भवन बना, इतना बड़ा ओम शांति भवन यहाँ 3000 भाई बहने बैठ सकते हैं, लेकिन जब बाबा आए यहाँ जिस दिन उद्घाटन था 18 जनवरी 1983 में, तो बाबा इस हॉल को देख के बहुत खुश हुए। तो कहा इतने लोगों के बैठने की व्यवस्था तो है परंतु रहने की व्यवस्था कहाँ है। तो रहने के लिए तो मुश्किल से 500-600 भाई बहन ही रह सकते थे पांडव भवन में। तो बाबा ने दादी को कहा कि यहाँ माउंट आबू में और जमीन ढूंढो और मिल जाएगी, तो यहाँ दादी जी को कहना। और कैसे बाबा ने एक आत्मा को टच किया कि ये जमीन हम ब्रह्मा कुमारियों को दे रहे। तो देखो बाबा अपना काम कराता है, तो कैसे वो जमीन भी मिल गई, फिर ज्ञान सरोवर बना। और उसमें लक्ष्य तो यही था कि केवल अकोमोडेशन हो, 1000 का अकोमोडेशन वहाँ सहज हो सके, क्योंकि यहाँ तो इतना नहीं है। परंतु वहाँ का जो हॉल है वो तो छोटा है, हारमोनी हॉल जिसमें 1600 लोग ही बैठ सकते, इसमें तो फिर भी 3000 बैठ सकते हैं। तो बाबा जब 18 जनवरी 1995 को उस हॉल का उद्घाटन करने आए ज्ञान सरोवर का, तो बाबा ने कहा कि ये हॉल तो बहुत छोटा है। उस समय ओम शांति भवन तो था ही, लेकिन ये हॉल तो बहुत छोटा है, अब हॉल बड़ा बनाओ। तो हॉल बड़ा इनसे कहाँ बनता, आबू में तो जमीन ही नहीं मिलती। तो बाबा ने कहा और ढूंढो। तब जाके शांति वन फिर बसा, जब 20,000 का हॉल वहाँ पर बनाया। तो बाबा जब वहाँ आते हैं तो बाबा कहते हैं कि अभी और बढ़ाओ। वो कहानी सुनाते ना मत्स्य अवतार की, सुनिए, मत्स्य अवतार मछली के रूप में कैसे भगवान आए। तो विष्णु के अवतार मानते हैं, तो मनु स्मृति में आता है, वो मनु तपस्या कर रहा था तो मछली आकाश से गिरी और आकर के उनके कमंडल में पड़ गई। तो वो मनु सोच रहा ये मछली कहाँ से आ गई, कमंडल में कैसे आ गई। तो परंतु देखा कि अब क्या किया जाए, तो मछली ने बात करना शुरू किया, क्योंकि वो बढ़ती गई। तो कहा कि मुझे इसमें से निकालो, बड़े बर्तन में रखो। तो उसको निकाल करके बड़े बर्तन में रखा, फिर और बड़ी होती गई। फिर कहा मुझे निकाल के और बड़े बर्तन में रखो, और बड़े बर्तन में। तो जितना बड़ा बर्तन में रखती गई उस मछली को, वो मछली भी बढ़ती गई। आखिर उसको सागर में डालना पड़ा। और फिर दिखाते जब प्रलय हुई तो सारी धरती को मत्स्य अवतार ने कैसे उभारा और उसको पार किया। ऐसे कहानियां है शास्त्रों में। तो मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, ये जो अवतार दिखाते हैं कि कैसे इन अवतारों ने संसार का उद्धार किया, वो कहानियां हैं। पर बाबा कहते वो मछली ने कहा और बड़ा स्थान दो का मतलब क्या है? कैसे थोड़ी मछली ऐसे बड़ी होती जाएगी, इसका मतलब है बाबा का ये कार्य बढ़ता जाएगा। तो जो भी जितना भी बना उतना वो छोटा होता जाता है। तो वही हम देखते हैं। परसों की मुरली में भी बाबा ने कहा, कई लोग कहते हैं कि आप लोग कहते हो विनाश होगा तो इतने मकान क्यों बना रहे हो, विनाश हो जाएगा तो मकान क्यों बना रहे हो। तो बाबा तो पहले तो एक बार बाबा ने कहा था कि मकान भी खत्म होंगे तो धन भी तो खत्म होगा ना, खाली मकान थोड़ी खत्म होंगे, विनाश में तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और फिर अंत में बाबा कहते हैं कि बच्चे आके रहेंगे, नहीं तो कहाँ रहेंगे, अंत में आना है। और उस दिन बाबा ने ये भी मुरली में कहा अंत तक जीते रहेंगे तो बाबा बहुत कुछ अनुभव कराएंगे, जैसे शुरू में अनुभव कराए, है ना। शुरू में 14 साल जो यज्ञ में रही बहने, तो 14 साल कैसे बीत गए अगर उन दादियों से हम अनुभव पूछते थे तो दादियां कहती थी पता ही नहीं चला 14 साल कैसे बीत गए, ऐसे लगा जैसे 14 महीने या 14 दिन, इतना सहज रूप से, क्योंकि बाबा अंदर ही अंदर साक्षात्कार कराते रहते थे घर बैठे। दुनिया का मुंह देखने की उनको आवश्यकता ही नहीं थी। स्वर्ग के साक्षात्कार, सूक्ष्म वतन के साक्षात्कार, नहीं दुनिया के देवताओं के वो शहजादियां आती थी और खूब रास होती थी, बहुत कुछ करते थे। तो दुनिया में क्या चल रहा है ये तो उनको पता ही नहीं चला, और 14 साल कैसे बीत गए। तो बाबा कहते अंत के समय भी ऐसे ही होगा, दुनिया में हाहाकार होगा, जैसे उस समय भी विश्व युद्ध छिड़ा उन्हीं सालों में, 1937 से 1950 के बीच में, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ, और वो बम अमेरिका ने जापान पर गिराया तब जाके दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, सरेंडर किया जापान ने, जर्मनी ने, बहुत इतिहास है। फिर भारत में अंग्रेजों का राज्य था, अंग्रेजों को भारत छोड़ो के नारे लगाए, और कैसे अंग्रेज देश के दो टुकड़े करके चले गए, कितना खून खराबा हुआ। तो वो भी बहुत कुछ था दुनिया में, पर बाबा के बच्चे कैसे बैठे थे बाबा की गोद में। बाबा ने परसों ये भी कहा, कल की बात थी शायद, कल तो बाबा ने कहा कि बाबा की शीतल गोद में आकर के बैठते हो बच्चे, दुनिया में तो तत्ता तवा है। गोद क्या है, बच्चा बेचारा माँ की गोद में बैठता है, कई बार बच्चा कुछ शरारत करे या कुछ, मान लो कई बार बच्चा पेशाब भी कर लेता है माँ की गोद में छोटा सा है। तो एक बार मैंने अनुभव किया, ट्रेन में हम बैठे थे तो बच्चे को उठाए, बैठी थी गोद में लेकर के, तो बच्चे ने पेशाब कर लिया होगा, अभी धोया होगा पर ध्यान नहीं दिया, तो गोद में गोद गीली, मना साड़ी गीली हो गई, तो इतना गुस्सा आया माँ को, इतना गुस्सा, 1 साल का बच्चा होगा, 1 साल का भी नहीं होगा, इतना उसको मार रही, इतना मार रही है, मार रही है, इतना जोर जोर से मार रही है, और रोता जा रहा है, रोता जा रहा है, और मेरे पास ही बैठी थी ट्रेन में, और रोता जा रहा है और मारती जा रही है। अब मेरे को बड़ी दया आई, मैंने कहा माता जी क्यों बेचारे को मार रही हो, तो क्यों बेचारे को इतना मार रही हो, छोटा सा प्यारा सा बच्चा था। तो वो औरत बड़ी गुस्से में तो थी, तो एकदम से मेरा मुंह देखने लगी गुस्से में, उनका पता नहीं क्या कहेगी अभी, तो मुझे कहती है तुम्हारा क्या जाता है मेरा बच्चा है, तुम्हारा क्या जाता है मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, माना मैं जो चाहूं सो करूं, मारूं पीटूं कुछ भी करूं मेरा बच्चा है। तो बाबा तो कहते नहीं मेरा थोड़ी है, ये तो कौन किसका है, भगवान ने दिया है तो भगवान का समझ कर चलो। परंतु गुस्सा इतना था उसको, तो बाबा कहते हैं ये गोद भी क्या बन गई, तत्ता तवा बन गई। और बाबा ने हम बच्चों को शीतल गोद दे दिए, सतयुग में भी शीतल गोद होगी। कल की मुरली किसने सुनी, सुनी किसी ने भी नहीं सुनी, याद है ये सब बहुत सुंदर बातें थी, ये कल की थी या पता नहीं परसों की थी, कल की थी। तो शीतल गोद बाबा ने हमें दिए, तो सतयुग में देवताओं की भी शीतल गोदी होगी, देवताएं थोड़ी मारेंगे अपने बच्चों को, ऐसे शीतल गोदी होंगे। लेकिन यहाँ पर क्यों विशेष कहते हैं शीतल गोद है बाबा की, क्योंकि वो गर्म गोद और शीतल गोद का कॉन्ट्रास्ट है। यहाँ हम यहाँ सुख में, उस बाबा के प्यार में सुख का अनुभव कर रहे हैं, तो वहाँ सतयुग में भी करेंगे, सुख तो बहुत होगा लेकिन वहाँ वर्णन नहीं होगा सुख का। क्यों वर्णन नहीं होगा, वो सुख में है वहाँ कहेंगे देवताएं, पर यहाँ वर्णन है क्यों, क्योंकि दुख कॉन्ट्रास्ट में दिखाई देता है। तो कैसे बाबा कहते अभी तो बहुत दुख बढ़ने वाला है, त्राही त्राही करेंगे, दुख के पहाड़ गिरेंगे, बाबा तो तैयार कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं बाबा हमको डराते हैं क्या, डराते हैं क्या बाबा, क्या कहेंगे, दुख के पहाड़ गिरेंगे, सजाएं मिलेगी, ये होगा वो होगा, ये भी बाबा कहते हैं, और सुख की गोद में बैठे हैं, शीतल गोद में बैठे हैं, वो भी बाबा कहते हैं। पर जो बाबा ऐसी बातें सुनाते हैं विनाश की, तो क्या डराते हैं बाबा, क्या कहेंगे जी, सावधान करते हैं, जो वास्तविकता है वो तो बताएंगे ना, ताकि बच्चे तैयार हो जाए उसके लिए, क्योंकि नथिंग न्यू का भी पाठ पक्का करना है, एवर रेडी का भी पाठ पक्का करना है, अचानक का भी पाठ पक्का करना है। तो अचानक का पाठ पक्का होगा, नथिंग न्यू का पाठ पक्का होगा, एवर रेडी का पाठ पक्का होगा, तो वो सब देखते हुए भी हम अपने आप को स्थिर रख सकेंगे, नहीं तो हलचल भी आ जाएंगे, अरे ये क्या हो गया, पहले से ही मालूम था। सवेरे सवेरे उठते हैं ना, तो कई बार टीवी में देखते हैं कि आज का मौसम कैसा होगा, आज का दिन कैसा होगा, न्यूज में बताते भी हैं कि आज ये होगा, बारिश आएगी या धूप निकलेगी या होगा, जैसे तूफान आएगा, आंधी आएगी, तो ये क्यों बताते हैं, वो क्या डराते हैं, समझो न्यूज में आता है कि आज बारिश पड़ेगी या तूफान आएगा, आंधी होगी या मछुआरे सागर में नहीं जाए, तो ये कोई डराने के लिए थोड़ी बोलते हैं, ये किस लिए बोलते हैं, सावधान करते हैं। तो भगवान भी अगर कहता है दुख के पहाड़ गिरेंगे, ये सब तो डराने के लिए बोलते हैं, क्या सजा मिलेगी, डराने के लिए। कई बार हाँ लौकिक में हम देखते हैं माताएं बच्चों को डराती है, देखो देखो खाना नहीं खाता है बच्चा, तो डराती है, देखो देखो बाहर हवा है खा जाएगा, हवा हवा, जब बच्चा डर के मारे खा जाता है, हवा ना आ जाए तो इसीलिए वो डराना नहीं चाहिए, वो डराना है, बच्चे डर जाते हैं, देखो बाहर है ना भूत है भूत, तो ऐसे बच्चों को कभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये डरा रहे हैं। तो पर बाबा हमें डरा नहीं रहे हैं, बाबा हमें वास्तविकता बता रहे हैं। बच्चों से कुछ काम कराना होता है पर बच्चे मानते नहीं है, तो क्या क्या माताएं क्या करती है, समझो बच्चे को कहेंगे बेटा तुम पढ़ो, बेटा ये करो, नहीं मानता है, तो पहले तो माँ उसको प्यार से समझाएगी, बेटा तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम कितने प्यारे बच्चे हो, कितने लाडले बच्चे हो, तुम आज्ञाकारी हो, खूब उसकी महिमा करेगी, ये प्यार है माँ का, उसकी महिमा करके अपना प्यार बच्चे को जताती है। लेकिन अगर वो बच्चा फिर भी नहीं मानता, उस प्यार को समझता नहीं है, तो फिर माँ क्या करती है, पढ़ाना तो है ही, फिर भी नहीं पढ़ता है, वो प्यार समझता नहीं है कि माँ का प्यार मिल रहा है, तो फिर क्या करेगी माँ, नहीं फिर उसको टेम्पटेशन देती है, प्रलोभन देती, देखो बेटा तुम फर्स्ट नंबर आओगे ना, तुमको साइकिल लेके देंगे, तुमको ये लेके देंगे, तुमको वो लेके देंगे, पिताजी भी प्रलोभन देता है, तो बेटा तुम ये करोगे ना, देखना पापा तुमको ये लेके देंगे, तो बच्चा खुश हो जाता है, वो मुझे मिलेगा ना, इसीलिए उस आकर्षण से करते, पर मान लो वो आकर्षण भी उसको आकर्षित नहीं करती, फिर भी नहीं मानता, तो फिर ये तीसरा कौन सा तरीका है, थोड़ी आंख दिखाएगी, नाराज हो जाएगी, थोड़ी सजा का भी उसको बताएगी, देखो तुम नहीं करोगे, देखना सजा मिलेगी। तो ये इसने तीनों में प्यार समाया हुआ था, खाली लाड प्यार नहीं है, खाली महिमा ही नहीं करनी होती, सावधान भी करना होता है। जैसे कुम्हार होता है ना, कुम्हार अंदर से प्यार देगा, मटकी बनानी है या घड़ा बनाना है तो अंदर से प्यार देगा, और बाहर से जोर से मारता है थप थप थप, जोर से अंदर से प्यार देगा ताकि शेप बन जाए। तो इसीलिए बाबा भी हम बच्चों को ये प्यार का ही तरीका अपनाते हैं। हम अव्यक्त वाणी जब शुरू होती है तो पहला वाक्य कैसा होता है, बच्चों की सारी महिमा है उसमें, कितने बाबा हमारा स्वमान देते हैं, बाबा कौन से बच्चों को देख रहे हैं, पहला वाक्य ये आप पढ़ो, बाबा डैश 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 डैश, लिस्ट है लंबी, बाबा कौन से बच्चों को देख रहे हैं, और देख रहे हैं मिल रहे हैं वो आखिर में आता है, जो क्रिया है ना वो आखिर में आती है। अब जैसे बताया हम ट्रांसलेशन करते हैं तो इंग्लिश में क्रिया पहले आती है, उल्टा है, इंग्लिश के अंदर जो हिंदी में जैसे वाक्य बनता है इंग्लिश में उसका उल्टा बन जाता है। तो बाबा फलाने डैश 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 बच्चों को देख रहे हैं, और इंग्लिश में अगर ट्रांसलेशन करेंगे बाबा इज लुकिंग एट, तो सबसे पहले क्रिया आती है, बाबा क्या कर रहे हैं, लुकिंग, किसको देख रहे हैं, तो पहले देख रहे हैं फिर आएगा सारा, फिर किसको देख रहे हैं। तो हमको ट्रांसलेशन करनी होती है, वो लंबा लंबे से लंबा वाक्य होता है, तो सारा लिखना पड़ता है, क्योंकि को क्रिया का इंतजार करना है, क्योंकि तभी तो वाक्य बनेगा ना इंग्लिश में। तो जब वो लिखते जाते हैं हमारा नशा चढ़ता जाता है, बाबा किस किन बच्चों को चलो देख रहे हैं, मिल रहे हैं, जो भी बाबा कहेगा, पर लिखती जाती नशा चढ़ता जाता है। आप लोगों को ऐसा अनुभव होता है? होता है, लिखते हैं अव्यक्त मुरली जब बाबा की आती, आप लोग वहां भी तो सुनते होंगे ना, आता है डायरेक्ट, तो उस समय लिखते हो कि नहीं? तो जब लिखते समय हर मुरली में आप देखना बाबा का जब पहला वाक्य होता है कितना प्यार से भरा हुआ होता है। बाबा टाइटल देते हैं, बाबा महिमा करते हैं बच्चों की, तो उस समय अपने आप को देखिए, हम सचमुच ऐसे हैं, हम हैं। अगर मान लो नहीं भी हैं, लेकिन ये बाबा प्यार दे करके हमको उस दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि बच्चे असल रूप में तो है ना। तो इसीलिए एक तो प्यार देते हैं, फिर दूसरा बाबा हमें प्रलोभन भी देते हैं, बच्चे मैं तुमको स्वर्ग का महाराजा बनाऊंगा, स्वर्ग की महारानी बनाऊंगा, बच्चे तुम तो बहुत ऊंच पद पाएंगे, सारे विश्व पर तुम्हारा राज्य होगा, मैं हथेली पर स्वर्ग लेकर के आया हूँ, ये तुमको सौगात में दे रहा हूँ, पर बच्चे उसके लिए पुरुषार्थ करो। तो टेम्पटेशन भी देते हैं, प्रलोभन भी देते हैं, स्वर्ग का प्रलोभन देते हैं, पर फिर भी अगर बच्चे नहीं मानते तो बच्चे सजा मिलेगी, सजा खाएंगे, धर्मराज की सजा खाएंगे। तो इसीलिए इसमें भी प्यार है, क्योंकि बाबा नहीं चाहेंगे कि बच्चे धर्मराज की सजा खाए, कौन माता पिता चाहेगा। अगर किसी का समझो पिता जज हो, हम कई बार उदाहरण देते हैं, किसी का पिता जज हो और वो जज कुर्सी पर बैठा है और उसी का अपना बेटा ने हत्या की, मान लो उसके ही बेटे ने, और वो मुजरिम बन करके कटघरे में खड़ा होता है अपने, और है तो पिता उसका जज, और उस समय वो जज की कुर्सी पर बैठा है, पिता तो पिता होते हुए भी उस समय है तो जज की कुर्सी पर, तो न्याय तो उसको देना है, परंतु उसका सिर तो झुक जाएगा ना, कैसे झुकेगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि मेरा ही बेटा है। कई बार होता है ना कि किसी का बेटा बड़ा नालायक है और पिता तो बहुत बड़ा सज्जन है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, समाज में अच्छा नाम है उसका, पर बेटा नालायक है। तो जब बेटा नालायक है तो अगर वो ऐसा कोई गलत काम करता है तो केवल उस बच्चे का ही नाम बदनाम थोड़ी होता है, बाप का भी होता है, नहीं होता है? सबसे पहला प्रश्न करेंगे किसका बेटा है, किसका बेटा है, तो कहेंगे फलाने का बेटा, अरे ये फलाने का बेटा है, ऐसा तो बाप का नाम सब पहले बदनाम होता है, उसका बाद में कि बेटे को संभाल नहीं सका। एक बार वो अभी बीच में कई साल पहले इंग्लैंड का जो प्राइम मिनिस्टर था, टोनी ब्लेयर उसका नाम था, तो जवान था, उसका लड़का भी एक जवान था, तो खूब शराब पिया था और शराब पी करके वो नाले में पड़ा था, प्राइम मिनिस्टर का बेटा शराब पी करके, मना देखा, पुलिस ने देखा, उसको उठाया, एकदम शराब पी के जैसे बेहोश की स्थिति में था, तो उठाया तो पूछा तुम कहाँ के हो, क्या हो, तो पता चला ये तो प्राइम मिनिस्टर का बेटा है। तो प्राइम मिनिस्टर का बेटा ऐसे नाले में पड़ा है, तो अगले दिन अखबार में आ गया, पुलिस ने तो पकड़ लिया ना, अखबार में आया कि अगर प्राइम मिनिस्टर का बेटा बेटे को बाप संभाल नहीं सकता है तो देश को क्या संभालेगा, देश को क्या संभालेगा अगर अपने बच्चे को ही संभाल नहीं सकता है। मानो सोचो कितनी बड़ी बात हो गई है, बहुत बड़ी न्यूज थी उस समय, कुछ साल पहले की बात है। तो भगवान के हम बच्चे हैं, और अगर भगवान के बच्चे कुछ ऐसा गलत काम करते हैं तो भगवान का भी तो नाम बदनाम होता है ना, क्यों नहीं होता, आगे आगे ठीक है ना। तो इसीलिए बाबा ने हमें बहुत कुछ दिया है, प्यार ही प्यार दिया है, सारी मुरली प्यार से भरी हुई है। तो कई बार क्या कहते हैं, लव लेटर, मुरली क्या है, तीन पेज का चार पेज का लव लेटर है, प्रेम पत्र है, वो अगर हम समझ करके उसको महत्व देते हैं तो अपने दिल से, छाती से, आंखों पर, सिर पर रख के उसको हम अंदर ही अंदर धारण करते हैं, मुझे ऐसे बनना है, बाबा हमको उस नजर से देखते हैं। चलो ओम शांति, ओम शांति।
बहुत ही मीठी वाणी में, स्वीट वॉइस है ना दीदी का, कितना अच्छी तरह से मधुबन भूमि की महिमा, परमात्म आज्ञाओं का महत्व, बाबा के द्वारा मिल रही सावधानियों का महत्व हम सभी के सामने दीदी जी ने रखा। अभी समय होने जा रहा है ट्रैफिक कंट्रोल का, आप सबका स्वागत करने के लिए सतीश भाई भी पधारे हैं, लेकिन 7:30 का ट्रैफिक कंट्रोल, हाँ 5 मिनट योग करके हम सब अच्छी तरह से 5 मिनट में भी बहुत अच्छा नुमा शाम की साधना का बल भरेंगे। उसके बाद भाई जी का गीत हम सभी के सामने प्रस्तुत होगा और फिर दिनचर्या सुनेंगे और दिनचर्या के बाद दीदी जी आप सबको बाबा के यज्ञ की पवित्र टोली खिलाएंगी, ठीक है ना। तो आज हम सब अच्छी तरह से इस स्वागत की दिव्य घड़ियों का बहुत ही सुंदर आनंद अनुभव लेते रहेंगे। 5 मिनट पावरफुल परमात्म स्मृति में बैठे टोली का देखो, दीदी कहते शक्तियां बहुत बड़ी सेना में है। हम सभी के बीच में मधुर वाणी ग्रुप आदरणीय सतीश भाई और उनके साथी मौजूद हैं। हलधर भाई, हाँ बहुत ही सुंदर शब्दों में आप सभी का स्वागत प्रस्तुत करने के लिए पधारे हैं गीत के माध्यम से। मधुर वाणी ग्रुप आदरणीय सतीश भाई एवं हलधर भाई,
ओम शांति। आज तो हिसार वालों पर बाबा भी निसार है, बाबा दादियां दीदियां मधुन वाले हॉस्पिटल से हमारे हलधर भाई सब आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धुन बनाया है हमारे हलधर भाई जी ने।
मधुबन की बहार में प्यारे बाबा के प्यार में आए हैं हिसार वाले भट्टी करने।
बारिश की फुहार में खुशियों की खुमार में आए हैं भट्टी वाले शक्ति भरने।
आए हैं भट्टी करने भाई बहने। अंतर्मुखी बन करके ज्वाला जलाएंगे,
अशरीरी बन कर अस्थियां गलाएंगे।
अंतर्मुखी बन करके ज्वाला जलाएंगे, अशरीरी बन करके अस्थियां गलाएंगे।
संसार का संसारों का संसार
संसारों का संसार करने आए हैं ही सार वाले भट्टी करने, आए हैं भट्टी वाले शक्ति भरने।
ये सभी तो कलाकार हैं, वो साल के साल मिला के बजा रहे हैं, बहुत अच्छा।
फागी में दिखते फरिश्ते इन फजाओं में, दादियां भी स्वागत करती शीतल हवाओं में।
ओ, 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 फागी में दिखते फरिश्ते इन फजाओं में, दादियां स्वागत करती शीतल हवाओं में। बाबा बुलाए बाहें फैलाए, बाबा बुलाए अपने बाहों में भरने, आए हैं ही सार वाले भट्टी करने, आए हैं भट्टी वाले शक्ति भरने।
व्यक्ति वॉल्यूम थोड़ा जा रहा है।
संपूर्ण बन के दिखाना है, बाबा माँ के जैसे आगे बढ़ते जाना है। संपन्न और संपूर्ण बन के दिखाना है, बाबा माँ के जैसे आगे बढ़ते जाना है। वादा किया जो बाबा से, वादा किया जो बाबा से वो पूरा करने, आए हैं ही सार वाले भट्टी करने।
मधुबन की बहार में, मधुबन की बहार में प्यारे बाबा के प्यार में, आए हैं ही सार वाले भट्टी करने। बारिश की फुहार में, खुशियों की खुमार में, आए हैं भट्टी वाले शक्ति भरने, आए हैं ही सार वाले भट्टी करने, आए हैं ही सार वाले भट्टी करने, आ भट्टी करने, आ भट्टी करने।
बहुत 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 धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियों से दोनों ही हमारे भाइयों का दिल से अभिवादन करेंगे, उनों का भी स्वागत है।